ॐ नमः सिद्धेभ्य ॐ नमः सिद्धेभ्य ॐ नमः सिद्धेभ्य ॐ शुद्धात्मने नमः नमो हरिहन्तां नमो सिद्धां नमो नमो वर्षायाणं नमो लोये सौवसाहूणं दम्मो वत्सु सहावो खमादिभावो यदसविहो धम्मो चारित्तं खलु धम्मो जीवाणं रक्षणो धम्मो। यहाँ कहते कि वस्तु स्वभाव ही धर्म है और उत्तम क्षमादि आदि में सब दस के नाम लेना है। दश लक्षण धर्म है, धर्म तो एक ही है। यहाँ जब हम उत्तम क्षमादि दश लक्षण धर्म कहते हैं वो प्रकट करने योग्य धर्म की बात है। वस्तु का स्वभाव प्रकट नहीं करना है, वो तो है ही अनादि से, वो विद्यमान है। भले चाहे पर्याय में अधर्म हो रहा है फिर भी स्वभाव हमेशा ही, वो वस्तु का स्वभाव वस्तु में हमेशा ही मौजूद है, प्रत्यक्ष विराजमान है। और उस स्वभाव का लक्ष्य करने से पर्याय में धर्म की शुरुआत हो जाती है और उसी में स्थिरता होने से वो बढ़कर मोक्ष तक की प्राप्ति हो जाती है। तो हमें ये धर्म प्रकट करना है तो उसका विधि, उसका उपाय क्या है, उसकी यहाँ अपनी चर्चा चल रही है। वितराग भाव एक ही है, उस वितराग भाव को दस प्रकार से समझाया जाता है। तो ये दस अलग अलग उसके लक्षण बताए हैं, लक्षण जुदे जुदे पन वस्तु यानी वो धर्म तो एक ही है, उन धर्मों की यहाँ चर्चा चलती है। यहाँ ये भी बात बताए कि चारित्रो खलु धम्म, चारित्र ही धर्म है। ये कौन सा चारित्र समझना? बिल्कुल आत्मा में रमणता, ये चारित्र है। क्योंकि चारित्र आत्मा का गुण है और उसके जैसे ज्ञान का कार्य क्या है, जानना जानना, तो चारित्र का कार्य क्या है, तो स्थिरता करना। अपने आत्मा में ही स्थिर हो जाते हैं तो जैसा आत्मा का स्वभाव है वैसे पर्याय में सहज रूप से प्रकट होता है। वो प्रकट करने के लिए अन्य कोई करना नहीं है। जो हमने कल्पना में कुछ गलत मान्यताएं रखी है, मान के रखी है और उसको धर्म भी समझा है, जैसे आश्रव क्या है, तो पुण्य पाप के परिणाम आश्रव है और हमने आश्रव करने से धर्म यानी संवर प्रकट होगा, ऐसी हमारी खोटी मान्यता है। इसलिए हम राग द्वेष रूप तो अपने को समझ ही रहे हैं, उसमें से कुछ पाप रूप राग छोड़ना चाहते हैं और पुण्य रूप राग करना चाहते हैं और हमने धर्म किया ऐसा मानते हैं, क्योंकि ऐसा ही सुनते भी आए रहे, ऐसे पहले से कल्पना तो चल ही रही है। तो इसलिए हमें आगम के आधार से भगवान ने क्या कहा, मुनियों ने हमें क्या उपदेश दिया है, इसलिए हमारे सारे शास्त्र उपलब्ध है, उसके आधार से हमें धर्म का स्वरूप समझना है और वो समझकर अपने में स्थिरता करने से वो प्रकट करना है। केवल हमने परिभाषाएं याद की, आश्रव क्या है, संवर क्या है, वो परिभाषाएं याद करने से और जिसको भी ना मुखोद्गत करने से धर्म प्रकट होने वाला नहीं है। जो जैसा उपदेश दिया है वैसा हम स्वयं अमल में लाए तो हमारा धर्म प्रकट होगा। तो चारित्रो खलु धम्मो कह दिया है, परंतु धर्म का मूल क्या है, तो कहते सम्यक दर्शन, दंशन मूलो धम्मो। तो ये सम्यक दर्शन क्या है, तो कहते अपने को पहचानना, यही सम्यक दर्शन है। सम्यक दर्शन, सम्यक यानी यथार्थ, दर्शन यानी यहाँ प्रतीति। तो ये सम्यक दर्शन होता है उसी समय सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र भी प्रकट होता है। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग, तभी से मोक्ष मार्ग शुरू होता है। परंतु मोक्ष मार्ग उसी को प्रकट होता है जो पूरा मोक्ष मार्ग कहाँ से कहाँ तक, चौथे गुणस्थान से चौदहवें गुणस्थान तक और सिद्ध, इनका स्वरूप सही रूप से निर्णय में लेगा उसी को ये चौथा गुणस्थान प्रकट होगा। ऐसा नहीं कि अभी तो चौथा गुणस्थान प्रकट करेंगे, बाद में, अभी मुनि होने के लिए हमको टाइम है तो मुनि का स्वरूप बाद में देखेंगे अगले भव में, अभी क्या जरूरत है, ऐसा नहीं है। ये पूरा भगवान का स्वरूप, मुनि दशा का स्वरूप, प्रत्येक गुणस्थान का स्वरूप हमें मालूम होना चाहिए और ये जीवाणुम रक्षणो धर्मो, यानी जीवों की रक्षा करना वो धर्म है, यानी अहिंसा परमो धर्म कहते हैं। तो यानी दया धर्म का मूल है ऐसा जब कहते हैं, वो दया अपने से शुरू होती है, स्वदया। हमें स्व क्या है पता नहीं है, और बस हमने परजीवों की रक्षा की, उनकी दया पाली, उनकी हिंसा नहीं की, और उसी को हमने धर्म मान लिया है। तो ये तो शुभ भाव है। पुरुषार्थ सिद्धोपाय नाम का एक ग्रंथ है, किसने लिखा है मालूम है? हाँ, किसने लिखा है? शिल्पा जी जरा जोर से। आचार्य अमृतचंद्र जी ने लिखा है। तो वहां उन्होंने लिखा है, आत्मा में रागादि, रागादि ने शुभ और अशुभ राग की उत्पत्ति होना ही हिंसा है। यानी किसी को बचाने का परिणाम आया, वो हिंसा है क्या अहिंसा है? क्या कहते हैं? हिंसा है, क्योंकि आत्मस्थिरता छोड़कर बचाने का भाव उत्पन्न हुआ, ये शुभ भाव उत्पन्न होना, यही आत्मा की हिंसा है, अपनी हिंसा है। क्योंकि मुनिराज जो अपने में गुप्त हो जाते हैं, आत्मस्थिरता हो जाते, तो क्षपक श्रेणी चढ़कर अरिहंत हो जाते, तो उनकी सच्ची अहिंसा हो गई। परंतु जिसके ऐसे है तो उन पर्याय में भी परजीवों को बचाने का शुभ भाव आता है, पर शुभ भाव है वो धर्म नहीं है। धर्म क्या है? अंतरंग में स्थिरता, वही धर्म है, उतना ही है। जिसको हम यहाँ शुद्ध भाव या शुद्धोपयोग कहते हैं, वही धर्म है। परंतु जिसके ऐसा प्रकट हुआ है, ऐसे जीवों के पर्याय में ये शुभ भाव सहज आते हैं, तो उसको भी धर्म कह देते। कहना बात अलग है और यथार्थ में होना बात अलग है। तो यहाँ जो दश धर्मों की, जो दशलक्षण धर्मों की चर्चा है, और ये चरणानुयोग के ग्रंथों में ऐसा करना चाहिए, ये भाषा होती है। हर एक अनियोग की अपनी अपनी भाषा होती है। अनियोग समझते हैं? चार अनियोग के नाम मालूम है किसी को? पीछे आए हैं तो थोड़ा सुनेंगे तो सही। आपको मालूम है भैया? हाँ बोलो। प्रथमानियोग, चरणानियोग, कर्णानियोग, द्रव्यानियोग। तो तीर्थंकरों ने कौन से अनियोग में भाषा उनकी दिव्य ध्वनि की, किस अनियोग का उपदेश दिया उन्होंने? चारों अनियोग। तो कोई तो अनुयोग बेकार का होगा ना, खाली टाइम पास। मुनियों को टाइम नहीं जा रहा था, इसलिए टाइम पास करके उन्होंने कर्णानुयोग लिखा होगा। क्या कहते हैं? चारों ही अनुयोग उतने ही कार्यकारी है, और उनके द्वारा हमें अपना स्वरूप निश्चित करना है। ये कर्म की थियरी, कर्म के वो नाम याद करने के लिए बुद्धि की कसरत नहीं करनी है, हमें भेद ज्ञान करने के लिए वो बहुत कार्यकारी है। वो भेद ज्ञान कैसे करना है वो तो कला है, वो तो अभ्यास से प्राप्त हो जाएगी। परंतु कोई भी अनुयोग बेकार का नहीं है, ये कहना चाहते हैं। अभी यहाँ हमारा आज का जो विषय है वो है उत्तम तप। तो तप किसको कहना यही मालूम नहीं है। तो हमने तप किसको माना? हाँ, बाह्य क्रियाएं के उपवास किए तो हमने तप किया, और उससे हमारी निर्जरा हो जाएगी, ऐसे मान्यता है। और जितने अधिक उपवास किए उसका अधिक तप हुआ और उसके अधिक निर्जरा हो गया। पर जिसके अभी मिथ्यात्व चल रहा है, ऐसे जीव के तप होता है कि नहीं होता है पहले नक्की करना चाहिए। क्या मिथ्या दृष्टि जीव उपवास नहीं कर सकता? क्या कहते आप? मिथ्या दृष्टि जीव उपवास कर सकता है कि नहीं कर सकता? अरे 10-10 उपवास करेंगे, महीने का भी उपवास करेंगे, क्यों नहीं कर सकता? तो उसके निर्जरा कितनी होगी, ये मेरा प्रश्न है। नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? तप का अर्थ है प्रतपन। किसमें? अपने आत्मा में प्रतपन है, अपने आत्मा में स्थिरता है, वही तप है। और जब तक आत्मा में स्थिरता नहीं है तो बाह्य में कितने भी क्रियाएं करे, जिसको तप नाम देते हैं, पर जिसके जो अंतरंग में जो वितरागता है, ऐसे मुनियों के जो बाह्य में जो आचार होते हैं उसको तप कह देते हैं। परंतु सच्चा तप क्या है? जो आत्मा में स्थिरता, आत्मा का अनुभव, आत्मा के आनंद का वेदन, वही तप है। और यहाँ तो उपवास कर रहे हैं, गात्र शिथिल हो रहे हैं और बहुत भूख प्यास लग रही है, पर कंट्रोल करके बैठे हैं और हमने तप किया ऐसा मानते हैं, वो तप नहीं है। तो यहाँ शास्त्रीय भाषा में तप किसको कहना, इसको कहते हैं आचार्य जैसे ने बताया है, तात्पर्य प्रवचन सार में बताया है, समस्त रागादि परिभाव। समस्त राग यानी क्या? शुभ राग के अशुभ राग, सभी और उसका क्या कहा, परभाव। ये पर चीज है, पुद्गल है, इसके जो स्पर्श रस गंध वर्ण ये तो मेरे लिए परभाव है ही, परंतु इसको देखकर मेरे में जो कोई शुभ या अशुभ भाव उत्पन्न होते हैं, अच्छा है मुझे चाहिए वाली बात होती है, वो भी परभाव कहने में आता है। पर पदार्थों को देखकर जो भाव उत्पन्न होते हैं उसको परभाव कहते हैं। कल हमने उसके लिए दूसरा एक शब्द देखा था, संयोगी पदार्थों को देखकर जो भाव होते उसको एक संयोगी भाव, उसी को यहाँ परभाव कहे। तो कहते रागादि समस्त प्रभावों का त्याग, इच्छा के त्याग द्वारा। देखो हमें तो राग उत्पन्न हो रहा है, भगवान के प्रति भक्ति के भाव हो रहे हैं वो भी राग है, बच्चों के प्रति जो कुछ राग होता है, सांसारिक कार्य के प्रति वो अशुभ राग है, और किसी के प्रति द्वेष भी हो रहा है, ये सारे कैसे है, राग भाव है। और यहाँ कहते हैं उन भावों की इच्छा का त्याग। पहले राग का त्याग की बात नहीं की, क्योंकि राग हो रहा है, जो ऑलरेडी हुआ उसका त्याग करेंगे क्या, परंतु राग की रुचि होना बात अलग है और राग होना बात अलग है। फिर से, जिसको राग करने में शुभ अशुभ भाव करने में जिसकी रुचि है उसको कहेंगे वो राग की इच्छा है, राग का राग है। राग का राग समझ रहे, शुभ भाव पुण्य भाव करने की जिसके रुचि पड़ी है, आत्मा की रुचि जिसको नहीं है। चढ़ाला में आता है ना, पर द्रव्य तय भिन्न आप में रुचि सम्यक तो भला है, आपकी यानी अपनी आत्मा की रुचि उसको सम्यक तो कह दिया। और यहाँ किसकी रुचि हो रही है, ये उपवास आदि करने की रुचि, ऐसा नहीं कह रहे कि उपवास करना छोड़ दो, रुचि कहाँ पड़ी है अपनी उसकी बात यहाँ हो रही है। ये पुण्य की या और पाप की या क्रोधमान माया लोक की जो कोई रुचि है, रुचि पूर्वक कर रहा है, वो रुचि को पहले छोड़ेगा। क्यों छोड़ेगा, क्योंकि मैं कैसा हूँ, मैं तो राग रहित ज्ञान मैं आनंद मैं ऐसी मैं चीज हूँ, तो उसमें तो राग है ही नहीं है, पर्याय में है। देखो पर्याय में होते हुए भी स्वभाव में नहीं है, ये अभी नक्की करना है। पर्याय में राग द्वेष के होते हुए भी स्वभाव राग द्वेष से रहित है वो नक्की करना है, कहाँ, अपनी बुद्धि में। हमने आपको एक उदाहरण बताया था कि कपड़ा मलिन हुआ है, तो कपड़े की मलिन अवस्था का तो ज्ञान होगा, और उसी समय श्रद्धा क्या है, कपड़ा जुदा है और मलिनता जुदी है, तब जाके मलिनता दूर करने का प्रयत्न होगा। वर्तमान में हमारे मोह राग द्वेष के परिणाम है, भक्ति के भी परिणाम है, अन्य भी शुभ भी है अशुभ भी है, सब परिणाम चल रहे हैं। उन परिणामों की रुचि छोड़कर अपना स्वभाव का निर्णय तो अभी हो सकता है कि नहीं, क्योंकि हम जो जानना 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 हमारा कार्य हो रहा है, वो जानने जानने वाली शक्ति कहाँ से आ गई, कहाँ से प्रकट हुई। पर्याय तो एक समय की है, पहले नहीं थी अभी हुई है, तो हुई कहाँ से। जानना जानना जो हमारा हर समय कार्य चल रहा है वो स्वभाव के बिना हो रहा है क्या, ये मेरा प्रश्न है। स्वभाव तो परिपूर्ण है और जानने की पर्याय हमारी अधूरी है, परंतु उस अधूरी पर्याय में ये नक्की करना है कि मेरा स्वभाव परिपूर्ण है। क्योंकि हमने स्वभाव के 5 पॉइंट देखे थे, 5-6 पॉइंट्स याद है किसी को, हाँ बोलो। स्वतः सिद्ध होता है वो, किसी ने उत्पन्न नहीं कराया है, हाँ, और अनादि अनंत है, हाँ, परिपूर्ण होता है, अमर्यादित होता है, असहाय होता है, किसी अन्य चीज की सहाय की जरूरत नहीं है। ये निमित्त आदि जो कारण बनते वो पर्याय में बनते, स्वभाव में कोई कारण ही नहीं है, क्योंकि किसी से उत्पन्न हुआ नहीं है, वो है कब से, अनादि से, कब तक रहेगा, अनंत काल तक। किसी भी पर्याय के पीछे पूरा स्वभाव विद्यमान है, और हमारी सारी दृष्टि हमारी सारी कहाँ देख रहे हैं, हम पर्याय जितना अपने को मान के बैठे, और उसी पर्याय के पीछे हमारा परिपूर्ण स्वभाव है। तो हमारा स्व किस में स्थापित करना है, ये स्वभाव में, जिसको आपने जीव तत्व नाम दिया है, और बाकी आश्रव बंध समय निजरा तत्व सारे पर्याय। तो आश्रव बंध के होते हुए भी हमें स्व जो जीव तत्व है उसमें स्वपना स्थापित करना है, यही बात है। और वो स्थापित करके उसमें हम लीन हो जाए तो हमने तप किया, उसी को यहाँ क्या लिखा है, समस्त रागादि परिभावों की इच्छा के त्याग। इच्छा का त्याग है ना, मेरे स्वभाव में वो है ही नहीं है तो उसकी मुझे रुचि नहीं करनी है, मुझे रुचि मुझे प्रतीति मुझे ज्ञान अपने स्वभाव का करना है, इस तरह उसका लक्ष्य करना है, रागादि का लक्ष्य छोड़ देना है। पहले रागादि मिटेंगे नहीं, पहले उसकी रुचि छूटेगी, उसका लक्ष्य छोड़ देना है, क्योंकि स्वभाव में तो है ही नहीं है। तो उसका लक्ष्य छोड़ना है। अभी तक क्या कर रहे थे, वो राग द्वेष को ही करने जैसा मानकर कर रहे थे। और वो ज्ञान और राग इतना एक में एक भाषित होता है कि ज्ञान जुदा है और राग जुदा है, इसका विचार तक नहीं आता है। लोग कहते नहीं, स्वाध्याय करने के बाद, वो क्रोध होने के बाद थोड़ा थोड़ा विचार आता है। कोई बात नहीं, बाद में अभी आ रहा है, तो जब अनुभव हो जाएगा तो राग के होते हुए पता चलेगा कि ये राग जुदा है और मैं जुदा हूँ। अब इसको ये उत्तम शब्द जो लगाया है, वो सम्यक दर्शन सहित जो तप है उसी को यहाँ उत्तम शब्द बताया है। ये बाह्य तप को भी तप कह देते हैं, परंतु सच में तप क्या है? अंतरंग में स्थिरता स्वरूप का अनुभव। क्योंकि शास्त्र ने ही ये बात बताई है कि कोई जीव सम्यक्त्व के बिना, यानी आत्मा का अनुभव नहीं है, और करोड़ों वर्षों तक उग्र तप करे तो भी उसके वो जितनी निर्जरा होगी, क्योंकि एक एक समय में एक एक समय जितना लेता है उतना ही प्रत्येक समय छोड़ता है। जितने कर्म परमाणु आते हैं पुराने बंधे हुए उसमें से हर समय चले जाते हैं, ये तो हर एक जीव के लिए ऐसा ही है। परंतु जो सम्यक तो प्राप्त करता है, जो मुनि दशा प्राप्त करते हैं, जो अंतरंग में स्थिरता और बढ़ जाती है, उसमें एक समय प्रबोधने एक लॉर्ड जितना आता है, परंतु असंख्यात गुणा कर्म निकलते चले जाते हैं। जैसे हम आपको बताते, एक बड़ी टांकी है पानी से भरी हुई, और ऊपर के लेवल से 5 नलों में से पानी आ रहा है और नीचे के लेवल में से 5 नलों में से पानी बाहर जा रहा है, तो वो टांकी कब खाली होगी बोलो? नहीं होगी। वैसे क्या हो रहा है, हमारा भी मिथ्यात्व अविरति प्रमाद कषा और योग, इनके कारण जो आश्रय और बंध हो रहा है अनादि से चल रहा है, और उतना ही जो कुछ एक समय में जितना द्रव्य आ रहा है ना, कर्म जितने बनते हैं उतने ही कर्म खिर जा रहे हैं। इसलिए अज्ञानी भी तप करता है, तो तप करता है ना, उपवास आदि करता है या अन्य जो कोई क्रिया करता है, तो उसके तो मिथ्यात्व अविरति प्रमाद कषाय योग में से क्या क्या गया? कषाय थोड़ा गया कि नहीं गया? पहले मिथ्यात्व ही जाएगा। कितना भी कषाय मंद क्यों न हो, उसकी जाति अनंतानुबंधी की है, तब तक वो मिथ्यात्व भी साथ में है ही। तो इनमें से कुछ भी नहीं गया है, तो जितने वह कर्म आते हैं, हाँ कभी ऐसा होता है ना, शुभ भाव के वो साता के बदले असाता, असाता के बदले साता, ये शुभ आयु शुभ नाम वगैरह, उसमें थोड़ा अंतर्मूर्त अंतर्मूर्त का वेरिएशन, वो भी अंतर्मूर्त से लंबे हो, उसका कोई भी शुभ भाव से कर्म नहीं बनते, उसमें भी अंतर्मूर्त में शुभ अशुभ बातें चलती रहती है। तो कितना भी बंद हो, यानी ये 5 कारण मौजूद है, तो उसका जितना बंद होता है, कितने भी वो उपवास करे, भले मुनि दीक्षा धारण करे या करोड़ों उपवास करे, जो कुछ तप करे, फिर भी उसका कितना खिरता है? एक समय प्रकट, क्योंकि मिथ्यात्व नाम का तो आश्रय चल ही रहा है। मिथ्यात्व अविरति सब है नहीं, पर बाहर में व्रत धारण किए ना, फिर उसका पहला गुणस्थान है, तो उसकी अविरति चल रही। ये शरीर की क्रिया को व्रत नहीं कहते, शरीर की क्रिया को संयम, हमने कल संयम धर्म में देखा था इसको, तो करोड़ों वर्षों तक, यहाँ तो कहते कि करोड़ों भवन तक भी अगर तप करे तो भी उसकी जितनी निर्जरा होगी, ज्ञानी को छिनमाही, एक छोटे अंतर्मूर्त में उसकी होती है। क्योंकि उसके जो सारे कर्म की थियरी है कि सम्यक दर्शन होने के कारण उसके जो कुछ कर्म अधिक मात्रा में किस तरह से निर्जरा होती है, उसका सारा गणित है, बहुत विस्तार है। तो ये समझना कि उसके एक समय में को एक छोटे अंतर्मूर्त जितने कर्म खिरते हैं, अज्ञानी करोड़ों भवों तक तप तपे तो भी उसकी इतनी निर्जरा नहीं होती, ये तो हमारे घर की बात नहीं है ना, छड़ाला में भी बात यही बताई है। अभी यहाँ उन्होंने बहुत सारे ग्रंथों के आधार दे के वही बात यहाँ दोहराई है। तो यहाँ ये भी कहते हैं कि देखो, जैनियों में ने अभी दिगंबरों में इतनी नहीं है, इतनी श्वेतांबरों में मान्यता है, जितने उपवास करे उतने निर्जरा होती, जितना उपवास करे उतनी निर्जरा होती। हमारा जो पहला दिन होता है तो उनका वो तप की वो पारने का दिन होता है। हम विदेशों में भी जाते हैं, यहाँ की बात नहीं, वहाँ पर भी बहुत उनका इतना सत्कार वगैरह होता है, मंदिरों में 2-2, 3-3 हजार लोग इकट्ठे होते हैं और वो तप करने वालों उपवास करने वालों की बहुत सत्कार किया जाता है। हमको भी बोलते हैं कि वो पहला दिन आप आए हैं तो अच्छा है, आप यहाँ भाषण करो, कुछ प्रवचन करो। हमने बोला हमसे न बुलाओ तो अच्छा है क्योंकि जिसको तप मानकर आप ये उनका सत्कार कर रहे हैं वो तो तप है ही नहीं है, और बिल्कुल उनकी मान्यता इसकी कि जितना तप करते उतनी निर्जरा होती है, और तप किसको कहते हैं? उपवास को। ऐसा ही हुआ था, हमारा भूगोल का शिविर था। हमारे जो शिविर होते हैं ना, दिन में 6-6 घंटे हम बोलते हैं, तो भूगोल यानी त्रिलोक रचना संबंधी अपना शिविर था। और हमारे शिविरों में अन्य भी वो स्थानकवासी भी बहुत सारे आते, तो एक 85 वर्ष की वृद्ध महिला आई थी। तो वो सर्वार सिद्धि का वर्णन चल रहा था कि 33 सागर की आयु है, और देवों में ये नियम है जितने सागर वर्षों की आयु होती है उतने 1000 वर्षों के बाद उनको इच्छा होती है खाने, यानी भूख लगती है, और कंठ से अमृत जलता है तो उनकी वो इच्छा की तृप्ति हो जाती है। तो उनके लिए 33,000 वर्षों के बाद ये इच्छा हुई। तो उन्होंने प्रश्न पूछा वहां पर कि उनको तप नहीं होता क्या, तो उनको कितना तप है? अरे हम 2-4 उपवास करते हैं तो हमारे इतना तप होता है, इतनी निर्जरा होती है, तो उनके तप होता है कि नहीं होता? तो आप क्या कहेंगे, उनके तप है कि नहीं है? नहीं है, क्योंकि तप किसको कहेंगे, यानी केवल नहीं खाने को तप नहीं कहते। ये मुनि योग्य जो अंतरंग स्थिरता है उसको तप कहते हैं। चौथे गुणस्थान वाले की भी थोड़ी अंतरंग स्थिरता है, फिर भी उसको ये उत्तम तप या तप ऐसा नाम नहीं देते हैं। उसकी भी थोड़ी मात्रा में वैसा उसका तप होगा, परंतु उसको तप ऐसा नाम नहीं देते हैं। तो हमें तो ऐसा ही लगता है ना, बाह्य क्रिया की ये हमने इतना तप किया, परंतु वो बाह्य क्रिया का नाम तप नहीं है। शास्त्र में भी जो 12 प्रकार के तप बताए, 6 अंतरंग और 6 बहिरंग, उसमें भी ऐसे ना, ये उपवास है यानी अनशन जिसको कहेंगे, अवमोदर यानी कम खाना, या एकासन या जिसको हम कहते उनोदर, वृत्ति परिसंख्या, रस परित्याग वगैरह, ये जो कुछ है। तो कहते तो हम तो कथन जो है तो बाह्य त्याग की बात होती है, परंतु केवल बाह्य त्याग वो तप नहीं है। जिसके अंतरंग में उग्र स्थिरता है, ऐसे जीवों के जो बाह्य में आचार वगैरह उसके होते हैं उसको तप कहने दे कह देते हैं, परंतु केवल बाह्य में कोई क्रिया की तो उसका नाम तप नहीं है, उसका नाम संयम नहीं है, उसका नाम व्रत नहीं है। ये तो आगम में लिखा ना, मैं अपने तो घर की तो कोई बात नहीं है। संयम में तो संयम यानी सम्यक तो पूर्वक आत्मस्थिरता ही सब में, समाधि कहो, संयम कहो, तप कहो, ये सभी जो है वो सारे ही अंतरंग में स्थिरता के ही नाम है। उसी को सच्चा प्रतिक्रमण कहेंगे, उसी को आलोचना कहेंगे, उसी को हाँ वो सब उसी को कहेंगे, प्रत्याख्यान प्रतिक्रम उसी को कहेंगे। और फिर उसके जो बाह्य में जो कुछ बातें होती है उस पर वो आरोप आता है। जिसके अंतरंग में स्थिरता है उसके तो बाह्य में जो उपवास आदि धारण करते हैं उसको तप कह देते हैं, उसका एक बार खाना या कम खाना उसको तप कह देते हैं। कह देना अलग बात है, परंतु सच्चा तप क्या है? अंतरंग में कुछ न हो और केवल बाह्य में उसने आचार ऐसे पाले है, ऐसे क्रिया की, तो उसको तप नहीं कहते, उसको बाल तप कहा है कुंकुंदाचार्य ने। बाल व्रत और बाल तप, बाल ने अज्ञानी के व्रत और तप कहा है, और उससे उसको कुछ भी फायदा नहीं होगा। हाँ, कुछ थोड़ा सा अगर कषाय मंद हो तो पुण्य परिणाम से कुछ कर्म बन देंगे, एकाध वो मिलेगा जो कुछ संयोगों में कुछ अनुकूलता प्राप्त होगी, परंतु कितने काल तक? जब तक मिथ्यात्व नाम की वो आश्रव चल रहा है तब तक तो सारे कर्मों का वहाँ बंद चल रहा है, अल्टरनेटली चलेगा। थोड़े काल के लिए कुछ शुभ भाव हुए, वो तो कायम तो ऐसे पूरे लाइफ टाइम तक तो नहीं हो रहे हैं, समझ में आती ना? यानी उससे उसको भवों में कोई कमती नहीं होगी। जितने अनंत भव अभी तक करते आया है वही करता रहेगा। क्या अभी तक उसने कभी तप नहीं किया? ये छड़ाला में लिखा है ना कि मुनिव्रत धार अनंत बार ग्रेवे एक उपजायो। ग्रेवे समझते हैं? ये 16 स्वर्गों के ऊपर 9 ग्रेवे के ऊपर एक ऐसे 9 ग्रेवे विमान है, और वहां कौन उत्पन्न होता है? मिथ्या तो अवस्था में दृष्टि उत्पन्न हो गई मुनिराज, वो तो छोड़ो, वो मुनि ही वहां जाएंगे, कोई श्रावक तो वहां उत्पन्न नहीं होते। और कौन से मुनि हो गए? यानी मिथ्या दृष्टि भी जा सकते हैं, तो मिथ्यात्व अवस्था में वहां जन्म लेने वाले कौन है? तो उसको कहते हैं द्रव्यलिंगी। भले मिथ्या दृष्टि है, द्रव्यलिंग परफेक्ट पाल रहे, परफेक्ट यानी जैसे आगम है। हाँ बोलो, नहीं वही कह रही हूँ मैं, उनका प्रश्न ये, पंचम काल के मुनि कोई ग्रेवेक में जाएंगे क्या? तो कहते नहीं, क्योंकि वहां उत्पन्न होने वालों में सहनन का नियम है। ऊपर के 3 उत्तम सहनन वाले, वज्रषभ नाराज सहनन, वज्र नाराज सहनन और नाराज सहनन, ये ही क्या कहा? अर्धनारायण तो चौथे नंबर का है। तीन उत्तम सहनन वाले ही वहां जा सकते हैं, और इस काल में तो ऊपर के तीन सहनन होते ही नहीं है, तो वहां कोई उत्पन्न नहीं होगा। यानी इसका अर्थ क्या है, चौथे काल की जहाँ पोजीशन है, या यहाँ जब चौथा काल था, या विदेह में हमेशा चौथा है, वहां से उत्तम सहनन वाले वहां जा सकते हैं। और उसमें भी कंडीशन क्या, सहनन है इसलिए वहां गए, ऐसा नहीं है। उस विशिष्ट शुक्ल लेशा में आयु का बंध हो तो वहां जा सकते हैं, उसमें बहुत सारे नियम है। तो वहां जाने वाले के तो ये होगा, यानी इस काल में तो कोई वहां जाएगा नहीं, फिर भी अनंतों बार वहां गए। क्योंकि जब जब मनुष्य भव की प्राप्त किया, क्या हर एक मनुष्य भव ने उसने मुनि दीक्षा धारण की थी क्या, और ऐसे बिल्कुल निरतिचार पाले थे और वहीं की आयु बांधी थी? ये तो बहुत रेयर है। फिर भी अनंतों बार हो गए, क्योंकि हम अनादि से कहते हैं, उसका अर्थ क्या है? यानी इतने अनंतों बार मनुष्य होकर द्रव्यलिंग भी धारण किया, मुनि अवस्था धारण की, और मरकर ग्रेवेक में भी गया है, फिर भी क्या हुआ? आत्म ज्ञान बिना सुख लेश न पायो। सुख की शुरुआत ही नहीं हुई, धर्म की शुरुआत नहीं हुई। धर्म के लिए जो कुछ क्रियाएं की, परंतु धर्म की शुरुआत नहीं हुई। क्यों? सात तत्व संबंधी भूल रही उनकी। आश्रव तत्व जो पुण्य के परिणाम है, वह करके मुझे मोक्ष होगा या संवर प्रकट होगा, ये उल्टी मान्यता चालू रही। शरीर की क्रिया है वो मेरी क्रिया है मान ली, और वो राग में रुचिपूर्वक प्रवर्तन किया। यहाँ लिखा है ना कि जो राग है शुभ या अशुभ, उसकी इच्छा का त्याग करना, उसकी रुचि का त्याग करके अपने स्वभाव में स्थिर होगा तो धर्म प्रकट होगा। और धर्म प्रकट होने के बाद जो अतिशय उग्रता से अपने में स्थिरता होगी, तब उसको तप कहेंगे। ऐसे तप धारण करने वालों के बाहर में तो ऐसे सहज उनके भाव हो जाते हैं कि आज भोजन ही ग्रहण नहीं करना है, आज बस कभी कभी मास का एक महीने का उपवास करके जाते और एक ही कॉल रहते और छोड़ देते हैं, वो ज्यादा कठिन है उपवास करने से भी, तो ऐसा भी कर लेते हैं। जैसे हमारे आपकी मालूम है एक्सपीरियंस बात है कि जब परीक्षा आती थी तो क्या होता था, रात रात में जागना है तो क्या होता था, अरे भोजन क्या हुई? कभी चावल ही नहीं खाया, भोजन भी इतना सा ले लिया, छोड़ दिया। क्यों? क्या उपवास और तप कर रहे थे क्या? तो जैसे वो अन्न खाने से थोड़ी नींद ज्यादा आती है तो अपने आप ही वो कम हो जाता है, क्योंकि हमें जागना है, हमें अभ्यास करना है, उसके लिए हम लौकिक में भी ये बातें देखते हैं। और यहाँ तो उनके आत्मा की अनुभूति भी हो गई, अतीन्द्रिय आनंद की अनुभूति हो गई है, और फिर उनके ऐसे भी कर्मों के अपेक्षा निमित्त से देखेंगे तो भी वहां तो जो तीव्र निद्रा वाले जो कर्म है वो भी उनका उदय भी नहीं होगा, उनके वैसी निद्रा भी नहीं आएगी। क्योंकि मुनिराजों को भी कहते ना, वो पौन सेकंड की भी निद्रा नहीं होती, केवल लेते जाना उसको निद्रा मत कहो। उस अवस्था में भी उनके जो तत्व के विचार ही चलते रहते हैं बारंबार, क्योंकि छठा सातवा गुणस्थान उनका चलता रहता है, तो इतनी अल्प निद्रा भी उनके होती है। तो और बाहर में भी जो भोजन वगैरह संबंधी के विकल्प भी नहीं उठेंगे, उपवास धारण करेंगे, तो उसको तप कहने में आता है। परंतु वहां मुख्यता किसकी है? वो उपवास आदि क्रियाओं की मुख्यता नहीं है, वो करते हुए भी स्वसन्मुखता की और अपने में कैसे अधिक से अधिक शुद्धोपयोग में लीन हो जाऊं, इसकी मुख्यता रहती है, तो उनके तप होते हैं। फिर वो तपों का अलग अलग पद्धति से उन्होंने जो 12 तप है उसकी उन्होंने वर्णन किया है, उसका आता है शास्त्र में वर्णन बहुत विस्तार से उसके। ये जो मेरे हाथ में तो अभी धर्म के दशलक्षण नामक पुस्तक है, और बहुत विस्तार से उसका यहाँ वर्णन है, वो भी पढ़ने योग्य है। तो उसमें भी आता है ना, 6 तो बहिरंग तप है और 6 अंतरंग तप है। अंतरंग हो या बहिरंग हो, यहाँ मुख्यता तो अंतरंग में स्थिरता की ही बात बताई जाती है। अभी हम थोड़े इसमें से मैं आपको कुछ बातें बताना चाहती हूँ कि तप 2 प्रकार का है, बहिरंग और अंतरंग। बहिरंग ने बाह्य में जो अन्य जीवों को भी दिखे वो बहिरंग, और दूसरा है अंतरंग। बहिरंग भी 6 प्रकार का होता है, नाम याद है किसी को? आपको मालूम है? देखो, एक है अनशन, जिसको हम उपवास कहते हैं, अशन यानी खाना, अनशन यानी भोजन ही नहीं करना, जिसको हम उपवास कहते हैं। अवमौदर्य, उसका दूसरा नाम क्या है? ऊनोदर यानी भूख से कम खाना, उसी को यहाँ अवमौदर्य कहा। हम कहते हैं एकाशन किया, तो एकासन कैसे करते थे मुझे बचपन की याद है, आप कैसे करते भी मालूम नहीं है, है? देखा है क्या क्या?
एक ही जगह बैठ के वही चार,
हाँ एक ही आसन पर बैठना, उसको एकासन हमने कह दिया, एकासन का एकासन हो गया, एक आसन पर बैठ के क्या क्या करना, पहले में पहले एकासन शुरुआत में सुबह की चाय पी लेना, क्योंकि सुबह फिर क्योंकि अभी सबका एक आसन पर बैठ के सब करना है, फिर वो नाश्ता, फिर सुबह का भोजन, शाम का भोजन, वो सब, और फिर वो कुछ ना कुछ मिष्ठान तो चाहिए ही उस दिन है? तो उसको भी हम ले लेते हैं, मिष्ठान को भी खाना है, और हमारे बच्चे हो गए तो माँ तो कितना लाड़ प्यार करती है और क्या क्या खिलाती रहती है, और खा बैठा रहा थोड़ा देर ये जैसे अन्यमति होते ना एकादशी और दुप्पट खासी, हाँ वैसे हमारा एक आसन में, एक ही आसन में बैठकर क्या क्या नहीं करना है। एक आसन है वो, दो बार खाने के बदले एक ही बार खाना खाना है हमको, जो हम दिन में तो हमारा चलता रहता है ना, नाश्ता भी है, चाय भी है, दोपहर में भी कुछ नाश्ता है, दो टाइम भोजन करना है, और क्या क्या बीच बीच में सब कुछ चलता रहता है, तो ये सब बंद करके एक समय में कुछ ग्रहण करना है, और वो भी अल्प, ये दुपट नहीं लेना है। यहाँ प्रश्न है, अविरत समय दृष्टि के तप होते हैं क्या? द्रव्य लिंग मुनि की कोई कोई क्या
संख्या?
हाँ, द्रव्य लिंग के ऐसे क्या सूक्ष्म मान्यता रह जाती है? उसको समय दर्शन इसलिए नहीं रहता कि सात तत्व संबंधी उनकी विपरीत मान्यता रह जाती है, ऐसा कोई गृहित मिथ्या तो नहीं कहेंगे, क्योंकि जिनलिंग धारण किया है, और जिनलिंग भी धारण किया है और उनके परिणाम भी बिल्कुल मंद कषाय वाले हैं, ऐसा नहीं कि दिखाने के लिए कर रहे, वो सच चाहते हैं कि मैं मोक्ष मार्ग प्रकट करूं, धर्म प्रकट करूं, इसीलिए उन्होंने, और उनके कषाय भी अत्यंत मंद है, फिर भी ये कषाय के साथ एकत्व रह गया है, ज्ञान और राग द्वेष यानी शुभ परिणाम लेते हैं मुनि योग्य आचरण, इसमें उन्होंने भेद नहीं किया, जिसको भेद विज्ञान कहते हैं कि ये करने जैसे है। अभी अपनी ये हो गई ना सात तत्व संबंधी मान्यता की बात अभी होगी, ये उपादेय की जब यहाँ चर्चा चलेगी कैसे होते हैं, जो का क्यों श्रद्धान नहीं हुआ है, करने जैसा मानकर कर रहे हैं, और ये मेरा कार्य है, मेरी क्रिया ऐसी मान्यता पड़ी है, इसके कारण इतना करके भी हमें भी, अरे इतना सब किया बेकार गया क्या? कितना करते हैं क्या करते है, उसका फल नहीं है, फल तो उस मान्यता का है। धर्म की शुरुआत मान्यता सही होने पर होती है, बाह्य में कुछ नहीं किए उसने, व्रत आदि या कुछ उपवास आदि कुछ नहीं धारण किए है, फिर भी मान्यता सही होकर राग द्वेष रहित अपना स्वभाव भाव है, तो राग द्वेष का लक्ष्य छोड़कर स्वभाव में स्थिर हो जाने से धर्म शुरुआत होता है, जो स्वाधीन है, सहज है, सरल है, और जो अनंत जीवों ने जो करके दिखाया है वो हम आप क्यों नहीं कर सकते? कितने जीव सिद्ध हो चुके अभी तक अनंत, तो वे भी पहले मिथ्या दृष्टि थे कि नहीं थे? तो उन्होंने भी उस समय सर्वज्ञ भगवान का जो उपदेश सुनकर उस पर विचार करके अपना धर्म प्रकट करके स्थिरता करके मोक्ष प्रकट किया, तो हम आप क्यों नहीं कर सकते? स्वभाव तो हमारा भी वैसा का वैसा है, उसमें रंच मात्र भी कुछ कम नहीं हुआ है, भले अनादि से हम विवाह करते आए हैं, पर स्वभाव में कोई रंच मात्र भी उसमें कोई कमती नहीं हुई, वो जैसा का वैसा कायम है, तो जब चाहे हम उसका लक्ष्य कर सकते हैं। उसके लिए क्या है, ये देवगुरु शास्त्र संबंधी निर्णय करना है, सात तत्व संबंधी, पहले ज्ञान होगा और फिर सही श्रद्धान भी हो, दोनों आवश्यक है, ज्ञान भी और श्रद्धान भी। वो किस रूप से श्रद्धान है, किसका आश्रय करने योग्य है, कौन से छोड़ने योग्य है, देखो ये श्रद्धान में छोड़ने योग्य की बात है, प्रवृत्ति में छोड़ने की बात नहीं आती है। लोगों को लगता है सब स्वच्छंद करा रहे हैं, सबका पुण्य की छोड़ रहे हैं और सबको पाप में ले जा रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। पुण्य छोड़ने लायक है ये जो मानेगा, उसको तो सम्यक तो प्रकट होगा, उसको और उच्च जाति के पुण्य होते रहेंगे। अब मुनियों को, मुनियों ने जो शास्त्रों की रचना की है वो शुभ भाव है कि शुद्ध भाव है? तो उन्होंने करने जैसा माना होगा, करने जैसा मानते तो उनके तो मुनिपना नहीं रहता, समझ में ना, वो स्वयं मानते हैं ना वैसा उपदेश देते हैं, क्योंकि राग करते जाओ और आपका भला हो जाएगा, धर्म प्रकट होगा, ऐसा उपदेश नहीं होता है। सबसे पहला उपदेश तो सम्यक्त संबंधी होगा कि जिसने सम्यक्त प्राप्त किया है, आत्मा की अनुभूति कर ली है, ऐसे जीवों को फिर आगे बढ़ने के लिए देखो उपदेश की भाषा आती है, ऐसा करो ऐसा करो। आचार संबंधी उपदेश भले होगा परंतु वो उपदेश कैसा स्वीकारना है, चरणानुयोग के ग्रंथों का अर्थ कैसे लगाना है, उसके लिए द्रव्यानुयोग के जो सिद्धांत है वो बिल्कुल जिसको हम कहेंगे निर्णय पूर्वक उसका स्वीकार होना चाहिए। तत्व निर्णय की जो बारंबार बात आती कि तत्व निर्णय होना चाहिए, तो निर्णय पूर्वक जब तत्व विचार करेगा तब उसको सम्यक्त की प्राप्ति अपने आप होगी। तो फिर प्रश्न नहीं उठेगा ये कर्मों का क्या होगा, अभी उसको कैसे हटाना, क्या करना, वो अपने आप चले जाते। जीव का कर्म में कुछ नहीं चलता और कर्म का भी जीव में कुछ नहीं होता, फिर भी क्या क्या होता है निमित्त रूप से उसका कथन आता है शास्त्र। हमें कोई डर की बात नहीं है, हम अपना लक्ष्य करते हैं तो जो कुछ सबसे खतरनाक कर्म जो मिथ्यात्व वाला है वो सबसे पहले उदय में से चला जाता है, उसकी चिंता ही नहीं करनी हमको। परंतु ये राग की रुचि छोड़कर अपने में स्थिर होना है। यहाँ पर भी बहिरंग और अंतरंग जो तपों की बात आती है तो बाह्य में उनके कैसे आचार विचार होते हैं ऐसा उसका अर्थ है, परंतु उसको चरणानुयोग की भाषा में करना चाहिए वाली बात आती है। उपदेश की ऐसी बात होती है, ऐसी उसकी भाषा होती है। देखो यह हम
जो द्रव्यलिंग मुनिराज तो उनको सम्यक्त्व होता है कि नहीं?
हाँ, आपका ये प्रश्न है द्रव्यलिंगी मुनिराज को सम्यक्त्व होता है कि नहीं होता है। द्रव्यलिंग ने अभी उनके देखो द्रव्यलिंग भी क्या है कि बाह्य में निरतिचार पालन कर रहे हैं, ऐसा द्रव्यलिंग पहले गुणस्थानवर्ती जीव भी धारण कर सकता है और वो धारण करके उसको डायरेक्ट सातवां गुणस्थान भी हो सकता है, तो सम्यक्त्व के साथ ही होगा। किसी को पांचवा होगा, किसी को द्रव्यलिंग धारण करते हुए चौथा भी होगा, या दूसरी पद्धति से विचार करें जो कोई गृहस्थ है और उसको सम्यक्त्व प्रकट हुआ है, जैसे भरत चक्रवर्ती था, सम्यक् दृष्टि था, चौथे गुणस्थानवर्ती था, जब मुनि दीक्षा अंगीकार की उस समय उनके गुणस्थान चौथा था, कपड़े उतारते ही उनके गुणस्थान सातवां नहीं होता, विधि पूर्वक मुनि दीक्षा अंगीकार करके जब अंतरंग में ध्यान में लीन हो जाएंगे तब जाके उसको सातवां गुणस्थान प्रकट हुआ। यानी शुरुआत में द्रव्यलिंग होना ही चाहिए, द्रव्यलिंग के बिना भावलिंग प्रकट नहीं होता, ये तो नियम है। तो ऐसा द्रव्यलिंग कोई मिथ्यात्व अवस्था में धारण कर सकता है, कोई चौथे में धारण कर सकता है, कोई पांचवे में धारण कर सकता है, पर जहाँ द्रव्यलिंगी द्रव्यलिंगी ऐसी बात आती है मुख्यतः मिथ्या दृष्टि की बात, यानी द्रव्यलिंगी होकर भी आत्मा का अनुभव नहीं हुआ ऐसा जहाँ कथन आता है वहाँ उस मिथ्या दृष्टि की बात है। परंतु केवल द्रव्यलिंग किसी को पहले गुणस्थान में होगा, किसी को चौथे में, किसी को पांचवे में।
अगर द्रव्यलिंग है और मिथ्यात्व है तो पहला
अगर सम्यक्त्व के साथ सातवां गुणस्थान प्रकट होता है और सातवां छठा चलता है तब उनको भावलिंगी मुनि कहेंगे। अगर द्रव्यलिंग तीन चोकरी का कषाय का अभाव इतनी भी रास्ता, अगर द्रव्यलिंग धारण करते हुए उनकी इतना पुरुषार्थ नहीं हुआ, चौथे जितना ही हुआ, केवल अनंतानुबंधी मिथ्यात्व का ही उसका अभाव हो गया है, बाकी तीन कषाय चोकरी है अभी विद्यमान, तो उसको चौथे गुणस्थान वाला द्रव्यलिंगी कहे। अभी समय दृष्टि है, उसकी मान्यता सही है और वो समझ रहा है कि अभी मेरी मुनि योग्य दशा नहीं है, वो उसको पता है,
बट धारण कर रखा है।
हाँ बिल्कुल ऐसा ही होगा, धारण तो होना ही चाहिए पहले, नहीं तो कपड़े सहित अगर सातवां गुणस्थान प्रकट होता है तो फिर जरूरत क्या है छोड़ने की, समझ में। पहले द्रव्यलिंग होगा बाद में ही भावलिंग होगा, परंतु द्रव्यलिंग उसी को कहते हैं जो बिल्कुल शास्त्र के अनुसार जो निरतिचार। अभी मेरे हाथ में जो संयम प्रकाश है मुनिराज ने लिखा है, कोई सूर्य सागर जी महाराज हुए हैं तो ये पढ़ना, तो द्रव्यलिंग भी किसको कहते हैं ये आपको पता चलेगा, किसी श्रावक ने लिखा नहीं है, स्वयं मुनिराज ने लिखा हुआ है। तो क्यों ये हमें और प्रत्येक गृहस्थ का सम्यक दृष्टि भी हो उसका कर्तव्य है कि द्रव्यलिंगी जो सच्चा द्रव्यलिंगी है तो उसके भावलिंगवत उसके बिल्कुल उनकी जो अष्टद्रव्य से पूजा करना, नवधा भक्ति पूर्वक आहार दान देना, ये उसका कर्तव्य है, प्रोवाइडेड द्रव्यलिंग सही है, ये उसका कर्तव्य है। वहाँ क्योंकि वो भावलिंग, क्योंकि द्रव्यलिंग भावलिंग जैसे सातवें गुणस्थान वाला छठे में आए, छठे में से वो एक अंतर्मूर्त के लिए पहले में भी आ सकते, फिर चढ़ सकता है, चौथे में भी आ सकता है, वो तो निर्णय हम बाहर से नहीं कर सकते। हमें तो क्या दिखाई देगा, द्रव्यलिंग 28 मूल गुण, वो ही हमको देखना है और बिल्कुल उसका निर्णय पूर्वक उनको नमस्कार भी करना, ये सब उसमें एक कर्तव्य है श्रावक का। यानी द्रव्यलिंग कहने से वो कोई मिस्टेक की बात नहीं है, क्योंकि उसके पूर्वक ही मुनि अवस्था अंतरंग में स्थिरता प्रकट हो, उसके बिना नहीं हो। ये विधि पूर्वक मुनि दीक्षा जो है, उनके जो 28 मूल गुण की बात हमने की, वो पालन करना, उसको कहेंगे द्रव्यलिंग। नहीं हुई, हाँ उनको नमस्कार करना योग्य है, करना भी पर ऐसा ही है स्वरूप, पहले ही धारण करेगा और बाद में वितरकता प्रकट होगी। मैंने बताया था कि पहले गुणस्थान से प्रथमोपशम समयतो से ही सातवें गुणस्थान प्रकट होने वाले जीव, यानी वो तो इतना मैक्सिमम अंतर कितना पड़ेगा, तो 24 दिन रात का अंतर पड़ेगा, इतने में कोई ना कोई मुनिराज हो गए पहले से सातवें में जाने वाले, तो वो सारे द्रव्यलिंगी होगी ना, उसमें से जाएंगे कोई कोई, मैक्सिमम अंतर इतना पड़ता है। मिनिमम क्या है, हो सकता है अभी किसी ने सातवां गुणस्थान प्रकट किया, 5 मिनट के बाद किसी ने किया, 2 दिन के बाद किसी ने किया, ये मैक्सिमम अगर पूरे मनुष्य लोक में अंतर देखेंगे तो इतना अंतर, और ये शास्त्र का वचन है, अपना थोड़ा ही है। 24 दिन रात, हाँ वो पहले मैं 15 की भी बात की थी मैंने, पर 15 की बात वो पांचवें गुणस्थान के लिए होती, 24 दिन रात में कोई ना कोई जीव पहले गुणस्थान से प्रथमोपशम सहित सातवां गुणस्थान प्रकट करेगा ही करेगा। हाँ वेदक सम्यक के साथ कोई करेंगे तो उसके लिए कोई अंतर की बात नहीं, नहीं नहीं दिन रात मिलकर 24
अहोरात्र,
जैसे हम 24 दिन कहते हैं ना, रात दिन मिलकर उसको दिन कहने की पद्धति। हाँ
नहीं तो जो चौथे गुण धारण किया, चौथे गुण स्थान पर था, उसको पता नहीं था कि मेरा सातवां होगा कि मायाचारी
नहीं, मायाचारी नहीं होते, उसके तो बाह्य में ऐसे परिणाम आ रहे हैं जैसे हम आप स्वाध्याय कर रहे हैं, तो अभी सम्यक दर्शन नहीं हो रहा, हुआ नहीं है, हम मायाचारी तो नहीं कर रहे हम तो, और उनको भी जो होगा वो तत्व विचार से होगा, उन्होंने वो द्रव्यलिंग धारण किया इसलिए नहीं होगा, जो कुछ उनको सातवां भी गुणस्थान होगा तो तत्व विचार पूर्वक सम्यक्त्व और वो अधिक अंतरंग स्थिरता, इसके द्वारा उनको सातवां गुणस्थान होगा। व्रत धारण किए इसलिए होगा ऐसा नहीं है, पर कोई व्रत के बिना इतनी स्थिरता करेगा तो ये भी संभव नहीं, इनका सुमेल होता है। हाँ द्रव्यलिंग वंदन योग्य नहीं है, क्योंकि उनको यही कहना है कि केवल किसी ने बाह्य में लिंग धारण किया इसलिए वो मुनि अवस्था उनकी नहीं है, उनका भी उपदेश भी आप समझना चाहिए, वहाँ क्या उपदेश हो रहा है, क्या वो उपदेश भी ऐसा दे रहे हैं कि बस द्रव्यलिंग धारण करो और तुम्हारा मोक्ष हो जाएगा, उनकी मान्यता क्या है वो तो हम नक्की कर सकते हैं उनके उपदेश के अनुसार, समझ में है ना, केवल बाह्य के उनके रूप नहीं देखना है, उनके उद्देश्य में क्या बातें आती, क्या वो शुभ भाव करने से मोक्ष होता है ऐसा कहेंगे, यानी कोई द्रव्यलिंग जो मिथ्या दृष्टि और मान्यता भी गलत है, ऐसे भी होगा ना कि मान्यता उनकी यानी उनका सही तत्व विचार चल रहा है परंतु अभी तक उनको सम्यक तो नहीं हुआ, ऐसे जीवों को ही सातवां गुणस्थान प्रकट होगा, केवल द्रव्यलिंग धारण किया इसलिए नहीं है, वहां जो निषेध करते हैं तो जिसको कहेंगे बिल्कुल मिथ्या दृष्टि है उसका निषेध करते हैं, उन्हीं ने कुंकुंदाचार्य ने कहा रयन सार में कि मुनि का गुणस्थान बाहर से नहीं दिखाई देता, तो अब बाहर से क्या दिखाई देगा, उनका द्रव्यलिंग दिखाई देगा है ना, तो वहाँ उनको नमस्कार करना गृहस्थ का कर्तव्य है, ऐसा भी शास्त्र का ही वचन है, परंतु ऐसा है मालूम है आपको यहाँ कुछ है नहीं और फिर किसी लोक के वश, मित्रता के वश, समाज क्या कहेगा, इस तरह से उसका निषेध किया, ये अष्टपाउंड में तो बहुत विस्तार से कथन है, हमारे सारे आगम ग्रंथ भरे पड़े हैं, हमें कोई भी प्रश्न है, कोई भी शंका है तो उसका समाधान हमें आगम के द्वारा होता है, उसके लिए हम स्वयं आगम का अभ्यास करना चाहिए, क्योंकि यहाँ कोई आता है ऐसा कह देता है हम ऐसा लुढ़क जाते हैं, वहाँ से कोई ऐसी थप्पड़ मारता है हम उधर लुढ़क जाते हैं। वो मुरादाबादी लोटा होता है ना, मालूम है, गड़ू गड़ू। हाँ बिना बेस वाला, बूढ़ नहीं था, गोलाकार एकदम। ये तो हम अपना अभ्यास स्वयं करें और स्वाध्याय से अपना कर्तव्य, ये अपना जो निर्णय करके हमें अपना धर्म प्रकट करना है। दुनिया में क्या कर हो रहा है उसकी चिंता नहीं करनी है। अब यही अपना तो समय हो गया, यही रुकते हैं। बोलो 2400 भगवान की जय।